आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। गुड इवनिंग, आज 6 जनवरी है, शुक्रवार का दिन। आज तक रेडियो पर दिन भर सुन रहे हैं आप, मैं हूं नितिन ठाकुर। दिल्ली मेयर का चुनाव होना था, लेकिन उससे पहले दिल्ली सिविक सेंटर में हल्ला कट गया। आप बीजेपी नेताओं के बीच लात घूंसे चलने लगे, एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी गई, नतीजतन मेयर चुनाव स्थगित कर दिया गया। तो आज दिल्ली सिविक सेंटर में हुए हंगामे की वजह क्या थी, घटनाक्रम क्या रहा, इस सब पर बात होगी। वहीं दिल्ली से दूर बिहार में कल से जातीय जनगणना की शुरुआत होने वाली है, जिसका बीजेपी विरोध कर रही है। हालांकि सीएम नीतीश कुमार का कहना है कि इसकी तैयारी कर ली गई है और इसे बेहतर ढंग से अंजाम दिया जाएगा।
और कौन अलग अलग जातियों का जातीय जनसंख्या भी हो जाएगा और पूरे राज्य की पूरी जनसंख्या हो जाएगी।
तो कल से ही शुरू हो रही जातीय जनगणना का प्रोसेस क्या रहने वाला है, नीतीश कुमार इससे क्या हासिल करना चाहते हैं और केंद्र सरकार इसका विरोध क्यों कर रही है। विरोध पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद का भी हो रहा है। 17 नेता जो कांग्रेस छोड़कर आजाद के साथ गए थे और इनमें कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद भी शामिल हैं, फिर से उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। तो आजाद को लेकर नेताओं में असंतोष क्यों है, क्या कांग्रेस में पार्टी के नेताओं का भरोसा लौटा है, और आखिर में बात पाकिस्तान की, तालिबान पर किए गए कथित एयर स्ट्राइक की। कथित इसलिए क्योंकि ये दावा अफगानिस्तान के अखबार ने किया था, मगर दोनों देशों ने फिलहाल इसे खारिज कर दिया है। लेकिन बावजूद इसके सवाल तो हैं, तो इन सब पर बात करेंगे, लेकिन पहले वक्त है 60 सेकंड्स हेडलाइंस का। सूरज कुमार से सुनिए।
शुक्रिया नितिन। दिल्ली में मेयर चुनाव के पहले हंगामा, आप बीजेपी पार्षदों के बीच हुई धक्का मुक्की, मेयर चुनाव हुआ स्थगित। कल छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, कोरबा में होगी रैली। गंगाराम अस्पताल ने सोनिया गांधी का हेल्थ बुलेटिन किया जारी, सेहत में लगातार हो रहा सुधार, स्थिति स्टेबल। दिल्ली की तिहाड़, मंडोली और रोहिणी जेल में हुई छापेमारी, कैदियों के पास से मिले 115 मोबाइल फोन। मध्य प्रदेश के रीवा में मंदिर के गुबंद से टकराया प्लेन, पायलट की हुई मौत। जोशीमठ में डोर टू डोर सर्वे शुरू, शहर के नीचे 16 किलोमीटर लंबी सुरंग जमीन धंसने की मुख्य वजह, एनटीपीसी और हिलंग बाईपास प्रोजेक्ट रोका गया। कल से फिर हो सकती है पहाड़ों पर बर्फबारी, राजस्थान के माउंट आबू में पारा -30 पहुंचा। और अमेरिका के फ्लोरिडा में म्यूजिक वीडियो की शूटिंग के दौरान हुई फायरिंग, 10 लोग घायल।
ये है दिन भर, मैं हूं नितिन ठाकुर।
सीधा सीधा खूनी खेल है, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जनता ने हरा दिया, बुरी तरीके से हार गए वो लोग, तो ये कर रहे हैं। आप देखिए, ये कर रहे हैं हमारे एक पार्षद का, दो बार से चुना हुआ ये पार्षद है, इसका खून बहा रहे हैं सदन के अंदर, मारपीट, कपड़े फाड़ रहे हैं, देखिए आप।
बीजेपी खूनी खेल खेल रही है। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह उस वाकये का जिक्र कर रहे हैं जिसने आज दिल्ली सिविक सेंटर को शर्मसार कर दिया। दिल्ली निकाय चुनाव के बाद आज मेयर का चुनाव होना था, चुनाव तो नहीं शुरू हुआ, लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी नेताओं के बीच धक्का मुक्की जरूर शुरू हो गई। कोई हाथ में बीजेपी शर्म करो के पोस्टर लिए खड़ा था, कोई कुर्सी उठाकर विपक्षी खेमे पर फेंकने को तैयार था, कई तो एक दूसरे से फाइल छीन रहे थे, भाग रहे थे और आसन के आसपास एक दूसरे का गिरेबान पकड़ रहे थे। इन सारी घटनाओं की वजह ये कि मनोनीत सदस्यों का शपथ ग्रहण मेयर चुने जाने से पहले करने का फैसला लिया गया और पीठासीन की नियुक्ति को भी असंवैधानिक करार दिया गया। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज को सुनिए।
डीएमसी एक्ट के अंदर ये साफ प्रावधान है, नॉमिनेटेड काउंसलर हाउस के अंदर वोट नहीं डालता। आज एमसीडी के अफसरों के पास एलजी हाउस से मैसेज है कि एल्डरमैन जो कि नॉमिनेटेड काउंसलर है उनके वोट कराने, जो कि असंवैधानिक है, बेईमानी है, और इस बेईमानी के चलते उन्होंने हमारे एक पार्षद को पीटा है, उसको खून निकल गया, उसको कांच से मारा है, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।
वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का कहना है कि सदन में संख्या आम आदमी पार्टी की ज्यादा है, तो ये सारा किया धरा उनका है, बीजेपी का बिल्कुल नहीं।
बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देखिए, जो पार्टी सत्ता में है और जो पार्टी सदन में भी उनके नंबर ज्यादा है, उसके बाद भी ये हालत, उसके बाद भी सदन की गरिमा को गिराना, उसके बाद भी हल्ला गुल्ला करना, गुंडागर्दी करना, ये बिल्कुल ही आश्चर्य का विषय है।
तो खुद को इल्जामों से मुक्त करके दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। दूसरी तरफ इस झगड़े से दूर कांग्रेस ने मेयर चुनाव में शामिल नहीं होने का फैसला किया। इसके बाद आप विधायक आतिश ने कांग्रेस पर भाजपा को फायदा पहुंचाने का आरोप मढ़ा। आज चार घंटे चले हंगामे के बाद सदन स्थगित हो गया और माना जा रहा है कि मेयर चुनाव अब टल सकता है। आपने तो इस मुद्दे पर कोर्ट जाने के संकेत दिए हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई, पूरा घटनाक्रम क्या रहा, ये सब हमने पूछा दिल्ली में आज तक रेडियो रिपोर्टर राम किंकर सिंह से। वो सिविक सेंटर के बाहर ही मौजूद थे।
सुबह 6 जनवरी को सुबह 11 बजे जब कमिश्नर ने बाकायदा इस बात का अनाउंसमेंट कर दिया कि अब इलेक्शन की जो प्रोसेस है वो शुरू होगी, इससे पहले जो जिलाधिकारी हैं नई दिल्ली जिले के संतोष राय, वह प्रिसाइडिंग ऑफिसर पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा को शपथ दिलाएंगे। सत्या शर्मा ने शपथ लिया और शपथ के बाद साफ तौर पर कहा कि हम शांति बना करके आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, ये उन्होंने अनाउंस किया। उसके बाद से एक सेंटेंस उन्होंने यही कहा कि अब नॉमिनेटेड पार्षद शपथ लेंगे। बस इतना कहना था कि जो तुरंत वहां से मुकेश गोयल आम आदमी पार्टी के आदर्श नगर से वो रहने चुनाव जीते हैं इस बार, और वहां पर चुनाव जीतने के बाद उन्होंने साफ तौर पर इस बार वो नेता सदन भी बनाए गए हैं पार्टी की तरफ से, तो उन्होंने कहा कि मेरा अनुभव काफी ज्यादा है और ऐसे में आपको नॉमिनेटेड पार्षद का शपथ पहले नहीं करवाना चाहिए। बस इतना सुनना था कि बाकी उनके जो साथी पार्षद थे वो इकट्ठा हो गए, सब एक दूसरे के जगह से निकल करके वेल में आ गए और उसके बाद पीठासीन अधिकारी के मंच तक पहुंच गए। सबसे पहले जहां पर पीठासीन अधिकारी ने थोड़ी देर पहले ये बोला था, पहले तो उसी डायस को उखाड़ फेंका, उसके बाद जो है धक्का मुक्की हुई। आम आदमी पार्टी के पार्षदों को बीजेपी के कई पार्षदों ने रोकने की भी कोशिश की और इसी में धक्का मुक्की, गहमा गहमी, हंगामा, छीना झपटी, ये सब कुछ बढ़ा और जो स्थिति है वो पहुंच गई वहां तक कि अब पीठासीन अधिकारी क्या फैसला लेंगी। तो काफी ज्यादा तकरीबन 3-4 घंटे तक ऐसा ही होता रहा। बाद में पीठासीन अधिकारी ने फैसला लिया कि अब इस हंगामों को देखते हुए सदन की बैठक स्थगित की जाती है और अगली तारीख यानी अगली बैठक कब होगी इसका अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि आज जो मेयर का इलेक्शन हुआ था वो अब टल गया है अगली तारीख के लिए।
राम, अब क्योंकि मामला तो बड़ा हो गया है और चुनाव की अगली तारीख आने से पहले दोनों पार्टियों के बीच बातचीत को लेकर कोई खबर है क्या, ताकि घटना अब ना दोहराई जाए?
देखिए, सबसे पहले तो अब जो हुआ था यानी शपथ कराए जाने को लेकर जो बवाल था अब दूसरा मोड़ ले चुका है। अब एक पॉलिटिकल स्लग फेस्ट हो गया, यानी आरोप लगाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि दरअसल ये सब कुछ संविधान को ताक पर रख करके किया जा रहा है। जो पार्षद का नॉमिनेशन होना था नॉमिनेटेड पार्षद का, वो नहीं होना चाहिए था, सबसे पहले इलेक्टेड का शपथ होनी चाहिए थी। अब बीजेपी का कहना है कि ये तो पीठासीन अधिकारी तय करता है कि किसकी शपथ पहले होगी किसकी बाद में। तो बीजेपी का तो ये कहना है कि ये सदन में उनका बहुमत भले हो, लेकिन यहाँ पर देखिए नैतिक तौर पर उन्होंने जो जिम्मेदारी अपनी थी उसे साफ तौर पर नहीं निभाया। तो ये आरोप प्रत्यारोप है। अब मनोज तिवारी का ये दावा है कि कुछ काउंसिलर्स हैं जिनके साथ मारपीट हुई है और वो काउंसिलर्स जो है आरएमएल में पहुंची हैं, उन्होंने बकायदा मेडिकल कराया है और इस बाबत वो शिकायत भी करेंगी, ये उनका दावा है। अब साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरह से अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच स्थिति रस्साकसी और इस हद तक पहुंच गई है। तो अब देखना यह है कि अगली तारीख तक क्या ये दोनों प्रतिनिधि पीठासीन अधिकारी के पास जाकर के कुछ और बातें करते हैं। लेकिन अभी आतिशी ने जो कि एमएलए है आम आदमी पार्टी से, उन्होंने कहा है कि सदन को न चलने के लिए वह बाकायदा कमिश्नर से बात करेंगे। तो इससे पहले कि वो जाते पीठासीन अधिकारी ने अपना फैसला सुना ही दिया। अब देखना यह है कि अगली बार किस तरह से ये दोबारा से जो शपथ होती है उसके बाद इलेक्शन का प्रोसेस शुरू होता है।
एक आखिरी सवाल है मेरा राम, आम आदमी पार्टी ने मनोनीत सदस्यों को लेकर आरोप लगाया है लेकिन बीजेपी नहीं मानती, तो नियम क्या कहते हैं?
देखिए, जो दिल्ली नगर निगम का एक्ट वो कहता है, वो यही कहता है कि 10 जो नॉमिनेटेड पार्षद हैं उनको राजधानी दिल्ली के 12 जोन से चुना जाना चाहिए। ये सब कुछ एलजी के विवेक पर निर्भर करता है कि वो किसको चुने किसको नहीं चुने। साथ ही साथ वो एक ही जोन से कई लोगों को चुन सकते हैं या फिर अलग अलग 12 जोन से अलग ये ले आए। इसमें कोई आरक्षण नहीं है, यानी कोई महिला पुरुष का भी चक्कर नहीं है, यह स्वविवेक से एलजी के दिमाग पर निर्भर करता है। अब चूंकि एलजी केंद्र का नुमाइंदा होता है, लिहाजा ये लोगों को लगता है, खासकर आम आदमी पार्टी को लगता है कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ही उन्होंने नॉमिनेशन जो है ऐसे पार्षदों का किया जिनका वोटिंग राइट जिस जोन में वो वोट डालेंगे वहां पर डालने से बीजेपी का बहुमत बढ़ता है, और वो वोट डालेंगे स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुने जाने में, जो कि कार्रवाई अगर ये शपथ होती तो आखिर में वो होती, लेकिन ये सब होता उससे पहले ही ये हंगामा हो गया। और अभी तक की जो स्थिति है कि मेयर उपमेयर के चुनाव के लिए जो है बीजेपी के पास बहुमत नहीं हो, लेकिन आम आदमी पार्टी के पास बहुमत है। वहीं स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन की अगर बात करें, जहां पर 6 लोगों को सदन में चुना जाना था, उसमें बीजेपी बढ़त लेती हुई दिखाई दे रही है, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो जो बहुमत है कई जोन में बीजेपी का अच्छा हो गया, वो सिर्फ और सिर्फ हुआ इन नॉमिनेटेड पार्षद के वोटिंग की वजह से। अगर ये वोट पड़ता और आगे चीजें जाती तो कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि आम आदमी पार्टी को ये भी डर है कि हो सकता है कि जो स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन हो वो बीजेपी का न हो जाए, और यही वजह है कि उन्होंने नॉमिनेशन पार्षदों के होने से लेकर के शपथ तक में बार बार यही कहा है ये असंवैधानिक है, और उन्होंने संविधान के कई आर्टिकल का हवाला भी दिया।
बहुत बहुत शुक्रिया राम किंकर सिंह। दिल्ली के बाद अब बिहार की बात, जहां कल से जातीय जनगणना की शुरुआत होनी है। इस पर चर्चा तो खैर तब से थी जब जेडीयू बीजेपी गठबंधन में थे, हालांकि बीजेपी तब भी इसके खिलाफ थी और आज भी है, लेकिन इससे इतर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उम्मीद जताई कि जातीय जनगणना का काम ठीक से पूरा किया जाएगा।
सब जगह जा जा करके एक एक घर में एक एक बात को पूछेंगे देखेंगे, कोई अबजात की जगह उपजात बता देता है ना, तो ही ना बगल वाला बोलेगा तो ही उसको फिर समझा करके कि भाई देखिए, तो इसी तरह से क्योंकि उपजाति लिखा जाना तो ठीक नहीं ना है, जाति लिखा गया तभी ना संख्या ठीक से होगा। तो इस तरह से एक एक चीज सबको समझाए हैं, अलग पूरा ट्रेनिंग करके अब वो करने जा रहे हैं और जल्दी से जल्दी वो हो जाएगा।
बिहार सरकार पहले ही बिहार विधानसभा और विधान परिषद में इसे लेकर प्रस्ताव पारित करवा चुकी है। 2 चरणों में जनगणना होगी और कहा जा रहा है कि अप्रैल तक काम पूरा भी हो जाएगा। आरजेडी और जेडीयू जातिगत जनगणना के पक्ष में तर्क देती आई हैं कि 1951 में एससी और एसटी जातियों का डेटा पब्लिश होता है, लेकिन ओबीसी और दूसरी जातियों का डेटा नहीं आता है। 1990 में केंद्र की वीपी सिंह सरकार ने मंडल आयोग को लागू किया था। इसमें 1931 की जनगणना के आधार पर देश में ओबीसी की 52% आबादी होने का अनुमान लगाया था। इसी आधार पर ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाता है। जानकारों का मानना है कि एससी और एसटी को जो आरक्षण मिलता है उसका आधार उनकी आबादी है, लेकिन ओबीसी के आरक्षण का कोई आधार नहीं बनता। तो अब सवाल है कि बिहार सरकार जो जातीय जनगणना कराने वाली है उसका प्रोसेस क्या रहने वाला है, और यही हमने पूछा इंडिया टुडे मैगजीन में सीनियर एडिटर अमिताभ श्रीवास्तव से।
देखिए, जो बिहार में कास्ट बेस्ड सर्वे का जो पहला फेज कल से शुरू होने वाला है यानी जनवरी 7 से, उसमें बिहार के सभी 38 डिस्ट्रिक्ट में जो लिस्ट होगी वो हाउसेस की लिस्ट बनाई जाएगी, कितने अपार्टमेंट्स हैं, कितने घर हैं, उसमें कितने लोग रहते हैं उसका एक पर्टिकुलर डिटेल जरूर लिया जाएगा, और घर के जो स्वामी हैं ओनर ऑफ द हाउस है उनका डिटेल लिया जाएगा, प्लस लोकेशन मैप्स लिए जाएंगे, और ये सारे इंफॉर्मेशन को पोर्टल्स पर अपलोड कर दिया जाएगा। इंफॉर्मेशन अभी एक्सेसिबल नहीं होगी पब्लिक के लिए, लेकिन ये जो पहला पेज है उसमें इन सारी चीजों को काम करा जाएगा। इसमें तकरीबन 5 लाख से भी ज्यादा, जहां तक मेरी जानकारी है, सर्वेयर्स को एम्प्लॉय किया जा रहा है। अप्रॉक्सीमेटली बिहार में जो जनसंख्या मानी जा रही है वो 12.70 करोड़ है, तो इन सभी घरों को या इन सभी लोगों के कास्ट को समझने के लिए ये पहला फेज शुरू किया जा रहा है कल से। उसके बाद जो दूसरा फेज है उस फेज में जो थोड़ा सा ज्यादा इलेबरेट होगा, इसमें सभी घरों के सभी लोगों के विषय में जानकारी ली जाएगी, उनके इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में भी जानकारी ली जाएगी, और ये भी जानकारी लिया जाएगा कि क्या वो गवर्नमेंट के किसी स्कीम से बेनिफिटेड है या नहीं। जो दूसरे बार फॉर्म दिया जाएगा उसमें तकरीबन 26 कॉलम्स हैं जिसमें सभी तरह के इंफॉर्मेशन डाले गए हैं।
अमिताभ जी, ये तो साफ है कि राजनीतिक पार्टी कोई भी फैसला लेती है तो उसके पीछे उनका हित तो होता ही है, तो इससे नीतीश कुमार का हित क्या है, क्या वो हासिल करना चाहते हैं?
देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है पॉलिटिकल रिवाइवल के लिए नीतीश कुमार के और जनता दल यूनाइटेड के, एंड एट द सेम टाइम अब अगर आप देखेंगे एक पॉलिटिकल रिवाइवल की जो आवश्यकता महसूस की जा रही है राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से भी, उन दोनों पार्टियों के पॉलिटिकल रिवाइवल के लिए ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव, पॉलिटिकली एक बहुत अश्यूड मूव साबित हो सकता है। अगर आप शुरुआत से देखें तो टाइमिंग की बात करते हैं, मई 2023 में ये पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा, उसके बाद अगले 3 महीनों में तकरीबन ये सारे डिटेल्स बाहर आ जाएंगे, राइट। अब ये जो डिटेल्स बाहर आ जाएंगे तो हम सब समझते हैं कि इन डिटेल्स के बाहर आने के बाद एक सोशल चर्न इन द सोसाइटी शुरू होगा, और ये सोशल चर्न इन द सोसाइटी जो होगा वो ओल्ड कास्ट ब्लॉक्स को कंसोलिडेट करेगा। अगर आप देखिएगा कि बीजेपी की जो अपनी स्थिति है लोकसभा में, उसमें क्लियर है कि वो इन जो छोटी पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियां हैं, उनको उन्होंने डेसिमेट कर दिया है इलेक्टोरली 2014 में और 2019 दोनों चुनावों में। अब बीजेपी का क्या है कि दो पर्टिकुलर एजेंडा रहता है, नेशनलिज्म एजेंडा कह सकते हैं और दूसरा हिंदुत्व। अब इन दोनों एजेंडा को, चाहे नेशनलिज्म की बात हो या हिंदुत्व की बात हो, जो कमंडल का जो एक पर्टिकुलर उनको प्लेटफॉर्म के रूप में देखा जाता है कई बार पॉलिटिकली, उसको ये मंडल क्रिएट करके, मंडल वेव क्रिएट करने का प्रयास माना जा सकता है ये कास्ट सेंसस। इसको थोड़ा और ढंग से समझने की आवश्यकता ये है कि कास्ट सेंसस एडमिनिस्ट्रेटिवली भी एक अच्छा एक्सरसाइज माना जा रहा है, प्रूडेंट एक्सरसाइज माना जा रहा है। कई ऐसे लोग हैं जो इसमें मेरिट देखते हैं और उनका कहना है कि जो भी रिजर्वेशन या अदर बेनिफिट्स ओबीसी या ईबीसी या अदर बैकवर्ड कास्ट को, दलितों को दिया गया है, उसका जो क्रीम है या उसका जो मेजर चंक है वो उन पर्टिकुलर ग्रुप्स के सबसे फॉर्मेडेबल लेयर्स में जाके रह जाता है, और जो सबसे ज्यादा लोग वहां मार्जिनलाइज्ड है उनको सबसे कम बेनिफिट मिलता है। इसलिए उनका कहना है कि ये जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है अमंग द डिस्क्रिमिनेटेड पीपल, उनको ये सपोर्ट करेगा। जैसे आप मई 31st तक आप ये प्रोसेस कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप रिजल्ट शेयर करेंगे, राइट। तो 3 मंथ्स यानी जून जुलाई अगस्त आ जाएगा, अगस्त से जैसे आपने, उसके साथ ही जैसे ये रिजल्ट बाहर आएगा, एक बहुत मैसिव लेवल पर सोशल कंसोलिडेशन होगा, चर्निंग होगी सोसाइटी में, और इस तरह के ग्रुप्स को गवर्नमेंट जैसे बेनिफिट देने लगेगी तो 2024 के इलेक्शन के समय ये सोशल कंसोलिडेशन अपने पीक पर होगा, राइट। तो ये इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट है जिसके कारण ये दिखता है कि इसका इम्पैक्ट जो होगा वो फार रीचिंग होगा।
अच्छा, बीजेपी इसका हमेशा से विरोध करती आई है, थोड़ा इसके बारे में बताइए।
देखिए, एक तो बहुत क्लियर है कि बीजेपी बिहार में, यू नो, जब वो नीतीश कुमार के साथ थे तो उन्होंने इस कास्ट सेंसस या कास्ट एनुमरेशन, क्योंकि जातीय जनगणना तो केंद्र सरकार ही करा सकती है, जातीय जनगणना नहीं है, इसको जातीय जनगणना कहा भी नहीं जाएगा, हालांकि इसका इम्पैक्ट एग्जैक्टली वही हो। तो बीजेपी जब तक नीतीश कुमार के साथ थे तो बुरी तरह से फंसी हुई थी। क्यों फंसी हुई थी? क्योंकि वो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को सपोर्ट कर रही थी बिहार में, जिसका केंद्र पूरे देश में विरोध कर, जैसा कि आपको मालूम है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ होम ने पार्लियामेंट में डिक्लेयर करा था नित्यानंद राय जी ने कि भाई हम देश में कास्ट सेंसस नहीं कराएंगे। लेकिन इस बात का एक्सप्लेनेशन नहीं था कि जो बीजेपी जिस पर्टिकुलर पार्ट को देश में, जिस पर्टिकुलर प्रोसेस को देश के लिए मना कर रही है, वो बिहार के लिए कैसे उचित। ये तो एक पॉलिटिकल और या एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्ट्रडिक्शन तो साफ थे। अब बीजेपी क्यों नीतीश कुमार के साथ इस बात पर अगेंस्ट में नहीं जाना चाहती थी? क्योंकि वो जानती थी कि बिहार में जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट या अदर बैकवर्ड कास्ट का जो कंसोलिडेशन है वो उससे नाराज ना हो जाए, क्योंकि यही दोनों ग्रुप हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट और अदर बैकवर्ड कास्ट, जिनको लगता है कि इस कास्ट सेंसस का सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो बीजेपी पॉलिटिकली उसके खिलाफ नहीं देखना चाहती। सेंट्रल लेवल पर क्यों नहीं चाहती है, वो तो दो चीज बिल्कुल क्लियर है कि भाई मंडल वेव फिर से क्रिएट होने का एक डर है, और जब जब मंडल वेव क्रिएट होता है तो इसकी सबसे बड़ी बेनिफिशियरीज होती है रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, बिहार में जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की पार्टी। तो ना केवल एक कास्ट सेंसस एडमिनिस्ट्रेटिवली कमरसम होगा, टाइम कंज्यूम करेगा, पैसे बहुत ज्यादा लगेंगे, और इतनी सारी एक्सरसाइज के बाद भी अगर ये पॉलिटिकल बेनिफिट उस समय के सरकार को ना दे सके तो ये एक कारण है जिसके कारण मुझे लगता है कि जो केंद्र में सरकार है वो इसके विपक्ष में है।
बहुत शुक्रिया अमिताभ जी। कहते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते, लेकिन घर वापसी जब सियासत में हो तो चर्चा होती है। जैसे कांग्रेस छोड़कर गुलाम नबी आजाद की डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी में कुछ नेता गए थे और अब कांग्रेस में लौट रहे हैं। इनमें जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम ताराचंद हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सैयद पीरजादा हैं, और ऐसे भी मतलब सब मिला लीजिए तो 17 बड़े नेता सब शामिल हैं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नेताओं ने कहा कि कांग्रेस से जाना हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। एक्स डिप्टी सीएम ताराचंद ने घर वापसी की इजाजत पर राहुल गांधी को शुक्रिया भी कहा। इस मूवमेंट की टाइमिंग बड़ी खास थी क्योंकि जल्द ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर पहुंचेगी और जाहिर है कि इसे यात्रा के असर के तौर पर परिभाषित किया जाएगा। कांग्रेस ने पहले ही रणनीति के तहत फारूख अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, कम्युनिस्ट नेता यूसुफ तारिगामी और आवामी नेशनल लीग के मुजफ्फर शाह को यात्रा में शामिल होने को तैयार कर लिया है और इससे आजाद अब अलग थलग है। यहां तक कि ताराचंद ने तो आजाद पर सेकुलर ताकतों को कमजोर करने और इशारे इशारे में उनकी बीजेपी से मिली भगत होने का आरोप भी लगाया। हालांकि आजाद अभी भी अपने रुख पर कायम है, पर कांग्रेस के नजरिए से ये देखें तो एक बड़ी जीत लगती है। कम से कम ऐसा लगता है कि छिटके हुए नेताओं का पार्टी पर भरोसा लौटा है। पर सवाल यह भी है कि जो नेता इतनी धूमधाम से कांग्रेस छोड़कर गुलाम नबी आजाद की नई पार्टी में शामिल हुए थे, उनमें आजाद के प्रति असंतोष उपजा क्यों, अंदर खाने क्या हुआ, ये सब जानने के लिए हमने बात की आज तक रेडियो रिपोर्टर मौसमी सिंह से।
17 नेता जो 2 महीने पहले गुलाम नबी आजाद के साथ डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी में ज्वाइन किए थे और कांग्रेस को का दामन छोड़े थे, अब वो वापस आ रहे हैं तो जाहिर तौर पे उनका ये कहना है कि उनको पछतावा है, उनको जज्बाती हो गए थे वो और किसी एक दोस्त के कहने पर वो चले गए थे और उनसे भूल हुई, तो अपने आप को दूसरी पार्टी में ज्वाइन करना वो एक भूल मान रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो गुलाम नबी आजाद ने इनको वादा किया था वो शायद पूरा नहीं हुआ, या जिस वजह से ये पार्टी छोड़ के गए थे वो वजह नहीं रह गई। अब देखिए कि एक तरफ गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि वो एक सेक्युलर पार्टी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी खड़ी कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये पार्टी लोकतांत्रिक रहेगी, पर इन नेताओं का कहना था कि ये पार्टी सिर्फ गुलाम नबी आजाद अपनी मनमर्जी चला रहे थे। उन्होंने 3 नेताओं को एक्सपेल कर दिया जिसमें ताराचंद और बलवंत सिंह भी शामिल है, मनोहर लाल है, उनको एक्सपेल किया, उनको कारण बताओ नोटिस भी नहीं जारी किया। तो वही डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी जो खुद को कांग्रेस से अलग एक लोकतांत्रिक पार्टी बता रही है, वहां पे ही लोकतंत्र नहीं था और लगातार जिस तरह से आगे की गतिविधियां हो रही थी ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई एक अल्टरनेटिव देने की कोशिश है। किसी के दबाव में गुलाम नबी आजाद काम कर रहे थे, बीजेपी का कहीं ना कहीं इसमें इंटरवेंशन था, तभी इतने ज्यादा बंदोबस्त और इंतजाम हो रहे थे ऐसा भी नेता कह रहे हैं, और इसके चलते उनको लगा कि ये पार्टी में कोई विजन नहीं है और इसलिए उनकी घर वापसी जरूरी है।
मौसमी, क्या भारत जोड़ो यात्रा की वजह से या जो भी वजह हो कांग्रेस एक्शन में दिख रही है? क्या ये कहना सही है कि कांग्रेस पार्टी में नेताओं का भरोसा वापस लौटता दिखाई दे रहा है?
जाहिर तौर पे कांग्रेस के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि वो कांग्रेस जिसमें लोगों को अपना भविष्य नजर नहीं आ रहा था, लग रहा था कि कांग्रेस जो है ऐसे अपने आप में अंधकार में चल रही है या डूब रही है, और इसीलिए वो कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि उनका कोई सियासी भविष्य नहीं है। वो नेता अगर जैसे कि ये दर्जन भर नेता वापस आए हैं कुल मिला के 17, और बताया जा रहा है कि और भी भारत जोड़ो यात्रा में डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी से जुड़ेंगे, तो अपने आप में एक टर्न अराउंड आता है, एक टर्निंग पॉइंट है कांग्रेस के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो वापस आते हैं तो एक हवा माहौल बनता है कि कांग्रेस पार्टी दरअसल कैसी पार्टी है जहां पे लोग वापस लौट सकते हैं, गलती हुई है हमसे, तो अपने आप में कांग्रेस के लिए एक आधार बनता है कि कांग्रेस अब चैलेंज कर रही है बीजेपी को, कांग्रेस में हरकत दिख रही है, कांग्रेस में संगठन है और कार्यकर्ताओं में ऊर्जा है, इसीलिए जो है कांग्रेस अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। और यही वजह है कि आप देखिए जो नेता कह रहे थे कि कांग्रेस जो है बिल्कुल ही नीरस पड़ी है, वो अब कांग्रेस में वापस आ रहे हैं, तो एक मूड और माहौल बनाने की बात है, वो इस भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस में जरूर बना है।
अच्छा, पार्टी को इससे जम्मू कश्मीर में कितना फायदा होगा? जितने नेता वापस आए हैं उनमें से कितनों का जम्मू कश्मीर में आपको लगता है कि प्रभाव है?
अगर आप देखें कि इसका असर जम्मू कश्मीर में क्या पड़ा है, तो लगभग जो नई पार्टी थी गुलाम नबी आजाद की, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का पूरा जो संगठन है वो खिसक गया है, वापस आ गया है कांग्रेस में। दो वाइस प्रेसिडेंट वापस आ गए, दो जनरल सेक्रेटरी वापस आ गए, ढेरों पूर्व विधायक और प्रदेश अध्यक्ष जो पीरजादा है वो वापस आ गए, आपके पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके ताराचंद वापस आ गए। 50-50 साल से ये लोग कांग्रेस में थे और अब कांग्रेस छोड़ के गए थे, तो जाहिर तौर पे बड़ी वजह थी। और ऐसे में अगर जम्मू रीजन में ही आप ले लीजिए, 47 सीटें वहां की अगर है, तो उसमें से 40 सीटों पर 42 सीटों पर इसका असर पड़ेगा। खुद गुलाम नबी आजाद का क्षेत्र माना जाता है डोडा, और इन सब इलाकों को छोड़ दें, अगर इक्का दुक्का इलाकों को, किश्तवाड़ को छोड़ दें, तो बाकी सब इलाकों के जो नेता है संगठन के वो पार्टी में वापस आ गए। तो ऐसे में गुलाम नबी आजाद के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है कि आगे वो क्या राह अपनाएंगे। क्या उनके लिए दरवाजा घर वापसी का खुला है? और अगर नहीं खुला है तो क्या वो एकला चलो रे की नीति अपनाएंगे? क्योंकि फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और तमाम नेता तो राहुल गांधी और कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं।
बहुत शुक्रिया मौसमी आपका। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच टेंशन आजकल नए दौर में प्रवेश कर गई है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि TTP इसका सबसे अहम कारण है। इस आतंकी संगठन के हमले पाकिस्तानी जमीन पर बढ़ने के बाद गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने अफगानिस्तान को चेताया था। आपने सुना भी होगा कि इसके बदले में फिर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 1971 की याद दिलाई थी। अब खबर आई कि पाकिस्तान ने गुरुवार को अफगानिस्तान के नांगरहार और कुनार प्रांत में एयर स्ट्राइक की। इस ऑपरेशन का मकसद TTP आतंकियों को मार गिराना था, लेकिन हैरानी थी कि ना तो पाकिस्तान बोला ना तालिबान बोला, और फिर जब दबाव बढ़ा तो आखिरकार पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने बयान दिया कि खबर फर्जी है। दरअसल ये खबर एक अफगानी अखबार हश्त ए सुबह डेली की तरफ से हवा में तैरनी शुरू हुई थी, और जिस फोटो के आधार पर स्ट्राइक का दावा हुआ उसे फिर बाद में कई प्लेटफॉर्म्स ने पुराना बताया। इसके बाद अफगानिस्तानी TTP ने भी स्ट्राइक का खंडन किया, लेकिन कल पाकिस्तानी फोर्सेस ने TTP के 11 आतंकियों को साउथ वजीरिस्तान में मार डाला था, और इनमें जो है एक अहम कमांडर भी था, तोरे हाफिज। इसी दौरान हजारों लोग सड़कों पर भी उतरे, प्रदर्शन किया और आतंकवाद के लिए सरकार को दोषी ठहराया। तो फिलहाल सवाल यह है कि क्या हालात इतने खराब हो गए कि वाकई सरकार को एयर स्ट्राइक करनी पड़ सकती है अफगानिस्तान पर? और ये जानने के लिए हमने बात की सीनियर जर्नलिस्ट और कमेंटेटर प्रकाश केरे से, जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर गहरी पकड़ रखते हैं।
पाकिस्तान के संदर्भ में हम लोगों को एक चीज ये देखना होगा कि एक तो वहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, फिर जो राजनीतिक अस्थिरता पिछले साल में आई इमरान खान को जिस तरीके से हटाया गया और जोड़ तोड़ करके एक सरकार आई, फिर हमने देखा कि नए सेनाध्यक्ष की नियुक्ति में और ISI प्रमुख की नियुक्ति को लेकर कई तरीके के विवाद हुए, तो एक मौका आतंकवादी और चरमपंथी गुटों को भी मिला है अपने आप को असर्ट करने के लिए, तो वो कर रहे हैं। दूसरी तरफ पब्लिक परेशान है, तो पीछे आपने याद होगा जो कितनी बड़ी बाढ़ आई, कितनी बड़ी तबाही हुई और इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, पूरी स्थिति खराब है। तो जाहिर है कि अब ऐसी स्थिति में सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। पता चल रहा है कि भाई आर्मी चीफ भी जो है लंदन में बैठे हुए नवाज शरीफ तय कर रहे हैं, इमरान खान पे जो है जानलेवा अटैक हुआ, तो एक डिवाइडेड समाज है पाकिस्तान आज के डेट में, और सारे लोग उसी में, जितने भी चाहे वो सियासत करने वाले लोग हों, चाहे मिलिट्री हो या चरमपंथी गुट हो, ये अपनी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जाहिर है कि लोगों को तकलीफ हो रही है इस सिचुएशन से और वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, और कुछ जनता के एक समर्थन जो है वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान को भी मिल रहा है, ये भी हम लोगों को समझना चाहिए। मतलब वहाँ के जो चरमपंथी गुट हैं वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कुछ लोग हैं जो बहुत उग्रवादी विचारधारा रखते हैं या कुछ लोग हैं जिनके हाथों में बंदूकें हैं, बल्कि उनको कुछ क्षेत्रों में अच्छा पब्लिक सपोर्ट भी इंजॉय करते हैं।
प्रकाश, आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान की केंद्र सरकार प्रांत की सरकार से भिड़ रही है, क्या ये टकराव किसी बड़े राजनीतिक संकट को न्योता दे रहा है?
देखिए पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत बड़े संकट में है और मैं नहीं समझता हूँ कि अब इससे बड़ा कोई संकट हो सकता है कि भाई आपकी अर्थव्यवस्था भी चौपट हो, आपका जो है आपके देश में एक अनइलेक्टेड गवर्नमेंट चल रही हो जिसको आप बार बार डेमोक्रेटिक बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी मिलिट्री में जो है भरोसा कमजोर हुआ है, मिलिट्री ने जिस तरीके से पहले इमरान खान को सपोर्ट किया फिर उससे अपना हाथ पीछे खींचा, फिर आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान के साथ आपके संबंध किस तरीके के हैं, कुछ नहीं सुलझा तो पिछले दिनों हमने देखा कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री जो हैं वो उलझुल बयान देने लगे भारत को लेके जिसका कोई तुक नहीं था, कोई मतलब नहीं था, वो एक तरीके से भारत के अंदरूनी मामलों में सीधा दखल करना था। तो मैं नहीं समझता कि इससे कोई ज्यादा संकट आएगा। हाँ, दो स्थितियां हो सकती हैं, एक कि क्या आम लोग जो हैं वो चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या ग्रुप से संबंधित हो या किसी प्रांत में हो या किसी आइडेंटिटी उनकी हो, कोई सिंधी हो, कोई बलूची हो, कोई पठान हो, कोई पंजाबी हो, ये लोग क्या बड़े आंदोलन को सस्टेन कर सकते हैं वहां की पब्लिक। और सवाल यह है कि उसको लीड कौन करेगा। इमरान खान जो कर रहे हैं तो एक इमरान खान का अपना पॉलिटिक्स का मसला है, ये जो पार्टियां सत्ता में हैं चाहे वो नून लीग हो या भुट्टो वाली पार्टी हो पीपीपी, तो इनके पास भी सपोर्ट बेस है, इनकी भी सरकारें हैं, सिंध में पीपीपी की सरकार है। और ये इमरान खान ने जो ये बात कही है कि वो उनकी सरकार इस्तीफा देंगी, जो पख्तूनख्वा में जो उनकी सरकार है और पंजाब में जो उनकी पार्टी की सरकार है, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो सकता है। लेकिन क्या शहबाज शरीफ इलेक्शन के लिए तैयार होंगे, क्या भुट्टो फैमिली जो है वो इलेक्शन के लिए तैयार होगी, इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रवैया रहेगा, मिलिट्री किस तरीके से दखल देगी, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और जो पाकिस्तानी तालिबान है वो किस तरीके से असर्ट कर रहे हैं अपने आप को, और तहरीके तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ जो ग्रुप जो खुद आतंकवादी ग्रुप हैं या चरमपंथी गुट हैं उनको किस तरीके से प्ले आउट किया जा रहा है इस पूरे हिसाब किताब में, ये भी हमको देखना होगा। लेकिन वह संकट इस संकट का विस्तार होगा, न कि बहुत बड़ा कोई संकट होगा, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में कहा कि पाकिस्तान ऑलरेडी अपने इतिहास के सबसे बड़े संकट का सामना कर रहा है।
अच्छा, जाते जाते थोड़ा सा प्रकाश डालिए जरा कि जब तालिबान काबुल पर फिर से काबिज हुआ तो उससे रिश्ते जोड़ने के लिए तो इस्लामाबाद भागा भागा काबुल पहुंचा था, हमने देखा था, फिर 1.5 साल भी नहीं हुए, दोनों के बीच फिर दुश्मनी कैसे हो गई?
देखिए पाकिस्तान का आगे दिखने का एक जस्टिफिकेशन भी बनता है, क्योंकि जितने भी तालिबानी लीडरशिप में आज दिखते हैं लोग आपको और जो पहले भी रहे हैं जो अब जीवित नहीं है, वो सारे लोग अफगान वार के दौर में वो लोग पाकिस्तान में ही रहा करते थे, और जब इनकी 2001 में जब इनकी सरकार गई थी तो ये लोग भाग के पाकिस्तान में ही आए, और पाकिस्तान का अपना एक रोल रहा है, कभी गुलबुद्दीन हिकमतयार को सपोर्ट करना, कभी किसी को सपोर्ट करना, कभी किसी को सपोर्ट करना, तो उन्होंने तालिबानियों को सपोर्ट किया, हकानी नेटवर्क को फिल्टर दिया, सारे लोग पेशावर के मदरसों में पढ़े और मोहल्लों में रहे, तो पाकिस्तान का एक स्वाभाविक उनके साथ रिलेशन बनता है। और हामिद गुल का आप इंटरव्यू देखेंगे या आप उनकी किताब पढ़ेंगे तो वो बताते हैं कि किस तरीके से मुल्ला उमर के साथ उन्होंने पाकिस्तान के संबंधों की शुरुआत की थी, जो ISI के चीफ कवि थे किसी जमाने में। हम लोगों को कैटेगरिकली ये समझ लेना चाहिए कि किसी तरीके का कभी स्ट्रेटेजिक या कोई स्मगलिंग में या हथियारों की खरीद बिक्री में इनका कोई रिश्ता हो सकता है, लेकिन पाकिस्तानी तालिबान को अफगानिस्तानी तालिबान के साथ जोड़ के बिल्कुल नहीं देखा जाना चाहिए। अब आते हैं अफगानी तालिबान पे। देखिए आप अफगानिस्तान में जो तालिबान है वो चाहे जिस तरीके का भी हो, उसको लेके हमारे पास 50 सवाल हैं। क्या वो एक आतंकवादी ग्रुप है, क्या वो चरमपंथी ग्रुप है, क्या वो अफगानिस्तान को मध्य युग में ले जाना चाहते हैं, ये तमाम सवाल हैं उनको लेके। लेकिन हम इस तथ्य से मुंह नहीं मोड़ सकते कि अफगान तालिबान भी अफगानिस्तान के और सारे राजनीतिक जो फरीक हैं, जो राजनीतिक ग्रुप हैं, समूह हैं, पार्टियां हैं, उनकी तरह वो भी एक नेशनलिस्ट समूह है जिसकी अपनी प्रतिबद्धता जो है वो पहले देश के प्रति है, अफगानिस्तान को लेके है, पख्तून अवाम मेजोरिटी जो है उसको लेके है और अफगानिस्तान को एक करने को लेके है। और जिस तरीके का मौका तालिबान के पास अभी आया है, कोई भी ग्रुप उसको ऐसे ही हाथ से नहीं जाने देगा उलझुल चीजें करके, वो जो भी कर रहे हैं बड़े सोच समझ के कर रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान अगर ये समझ रहा है कि वो उनको एक वेसल स्टेट की तरह, एक अपने इशारों पे नाचने वाले समूह की तरह उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये उनकी पहले से भी भूल है। आप किसी को सपोर्ट दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, उनको सत्ता में लाने में मदद कर रहे हैं, तो आपको उतना ही एक्सपेक्ट करना चाहिए रिटर्न में, न कि आपको ये लगे कि अरे अपना आदमी मैंने बैठा दिया, वो मेरा गवर्नर है, वो वहां का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं है, वो मेरा गवर्नर है भेजा हुआ। तो ये पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को ये बात समझ लेनी चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश केरे। और वक्त इजाजत लेने का। कैसा लगा आज का पॉडकास्ट बताइएगा radio@aajtak.com पर। इस शो को प्रोड्यूस किया है सूरज कुमार ने, साउंड मिक्सिंग की है कपिल देव सिंह ने। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात फिर होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए और सुनते रहिए आज तक रेडियो।